पृष्ठ संख्या 174, अध्याय 15। दिन बीतने लगे। बसंती की भीगी भीगी ममता जो एक बार फूटी तो फिर थमने नहीं पाई। उसी से उसका सारा द्वेष, सारी घृणा, सारी ईर्ष्या बह गई। उसके मन में फिर से स्थिरता आ गई। वह फिर से चहकने बोलने लगी। यों भी बसंती भावनाओं के झूले पर झूलने वाला जीव थी। अंदर से ज्वार उठता तो वह नाचने लगती, प्रियजनों से लिपटने लगती, हंसने बोलने लगती। उसका स्वभाव ही ऐसा था। उस दिन प्रातः जब वह रुक्मी के बच्चे को छाती से लगाए मुस्कुराती हुई कोठरी में लौटी थी तो रुक्मी तो केवल इतना ही समझ पाई थी कि बसंती जो उसके बेटे को मारने निकली थी वास्तव में उसे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई थी। पृष्ठ संख्या 175। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। वह केवल अपने बच्चे को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। केवल बसंती को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चे की मृत प्रायः स्थिति उसका भ्रम मात्र था या सचमुच बच्चे की सांस उखड़ने लगी थी। एक बार सहज हो जाने के बाद उसका मन फिर डोला नहीं। कुछ दिन ही बाद एक दिन उसने अपना फैसला सुनाते हुए घर वालों से कहा, इधर मैं तंदूर लगाने जा रही हूँ, हम सब मिलकर तंदूर पर काम करेंगे। बात अभी भी दीनू के जहन में नहीं उतरी थी। बसंती हंसकर बोली, इस तरह उल्लू की तरह क्या देखे जा रहे हो, कह जो दिया इधर तंदूर लगाऊंगी। इधर पास में जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा है ना, वहीं पर हम अपना तंदूर लगाएंगे। रोटियां सेक कर भी देंगे और बेचेंगे भी, और साथ में दाल सब्जी भी बना दिया करेंगे। यहाँ पर पहले भी किसी का तंदूर लगा था। दीनू अभी भी नाक भौं चढ़ा रहा था। उसे यह काम झंझट वाला लगा। कुछ इसमें तौहीन भी नजर आई। कहाँ बारात के लिए खाना बनाने का नक चढ़ा काम और कहाँ पैसे पैसे की रोटी लगाने वाला तंदूर। लेकिन ना बारातों में उसे अभी तक कोई काम मिला था और ना ही कहीं नौकरी मिल पाई थी, और घर में दो दो बच्चों और दो दो बीवियां। फिर भी अपनी हुकूमत जताए बिना वह नहीं रह सकता था। कोई तंदूर वंदूर नहीं लगेगा, कह दिया। मेरे पास पांच घरों में से अब तीन घर रह गए हैं, इससे गुजर नहीं चल सकती। तंदूर लगा लेंगे तो हम तीनों उस पर काम कर लेंगे। दीनू बड़बड़ाता रहा, पर बसंती ने उसके साथ बहस करना जरूरी नहीं समझा और दूसरे ही दिन बसंती इस काम पर जुट गई। कुछ ईंटें उसे अपनी कोठरी के पिछवाड़े से बिखरी पड़ी मिल गईं। दो दो करके वह उन्हें उठा लाई। लोहे की दुकान के बाहर सरियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बसंती वहां से दो टुकड़े उठा लाई और स्वयं ही मोड़ माड़ कर उन्हें ठीक कर लिया। एक बोरी का टुकड़ा भी आ गया। चबूतरे पर बिछाने के लिए वह टाट का टुकड़ा और तीन चार बोरियां श्यामा बीबी के घर से मांग लाई थी। मिट्टी का घड़ा वह एक पियाऊ पर से उठा लाई थी जहां जाड़ों के कारण पियाऊ बंद पड़ा था। बसंती पृष्ठ संख्या 176 की कल्पना अब तंदूर के इर्द गिर्द अपने इंद्रलोक का निर्माण करने लगी थी। जब तंदूर चल निकलेगा तो मैं पीतल के दो बड़े पतीले भी ले आऊंगी। तंदूर पर पीतल का चमचमाता पतीला रखा हो तो राह जाते को भी भूख लग जाती है। दीनू रोटियां सेकेगा, मैं थाली परोसूंगी और पैसे वसूल किया करूंगी। वक्त आने पर गर्मियों से पहले ही इधर एक छप्पर भी डाल लेंगे। छप्पर के नीचे एक लंबी छड़ टांग कर उस पर चमचमाता हरिकेन लैंप टांग देंगे। अगर पैसे हुए तो गैस का लैंप ले आएंगे, उसकी रोशनी तो सड़क तक जाएगी। चबूतरे पर दोनों बच्चे खेला करेंगे। कभी कभी तो बसंती को सचमुच लगता जैसे तंदूर के पास चबूतरे पर पीतल के पतीले चमक रहे हैं। टाट पर एक ओर को रुक्मी का बालक सो रहा है और चबूतरे के ऊपर पप्पू बैठा गोलियां खेल रहा है। खूंटे पर से लटकता लैंप जैसे उसके भविष्य को भी रोशन कर रहा है। तंदूर बनकर तैयार हो गया। सचमुच बसंती रोटियां सेकने लगी और सचमुच ही नन्हा तंदूर के आसपास खेलने लगा। और तंदूर पर खाता खाने वाले पहले ग्राहकों में कोई माने या नहीं माने लंगड़ा बुलाकी था जो बसंती की ही टोह में उधर आ निकला था और भूख लगने पर तंदूर पर खाना खाने बैठ गया था। इस वक्त दीनू तंदूर पर बैठा रोटियां सेक रहा था और बसंती पास में बैठी दाल में करछोल चला रही थी। बुलाकी ने दीनू को नहीं पहचाना, पर बसंती ने बुलाकी को देखकर झट से घूंघट काढ़ लिया था और टेढ़ी होकर बैठ गई थी। खाना खाते समय बुलाकी दीनू और बसंती के बारे में सवाल पूछने लगा कि क्या वह दीनू नाम के उस हरामी को जानता है जो उसकी घरवाली को दूसरी बार भगा कर ले गया है, कि वह इधर ही कहीं रहता है। इस पर घूंघट के पीछे से बसंती हंसकर फुसफुसाई थी, इनसे पूछो जी कौन थी इनकी घरवाली। बुलाकी ने नाम बताया तो फिर घूंघट के पीछे से बसंती फुसफुसाई, पूछो जी इनसे वह क्यों भाग गई थी। और देर तक बसंती उसके साथ ठिठोली करती रही थी। खाना खा चुकने पर बुलाकी ने कहा था, भगवान तुम्हारा भला करे। उस हरामी का पता चले तो भैया इधर चौधरी नाई बैठता है, उसे बता देना, बाकी बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। और लाठी पटपटाता चला गया था। और बसंती पृष्ठ संख्या 177 देर तक हंसी से लोटपोट होती रही थी, पर तंदूर चल नहीं पाया। बसंती का तंदूर बाबू लोगों के दो मंजिला घरों से थोड़ा दूर पड़ता था, और रमेश नगर वाला ढाबा बस्ती के बहुत से लोगों की जरूरत पूरी कर रहा था। वक्त रहते बसंती का तंदूर चल भी निकलता, क्योंकि बसंती उस पर दिन रात पसीना बहाती थी, पर उसके जीवन में फिर से बादल घिरने लगे थे। दीनू और रुक्मी के बीच फिर से खुसफुस होने लगी थी, फिर से रुक्मी की नज़र टेढ़ी होने लगी थी, और उसमें संशय और ईर्ष्या और अविश्वास झलकने लगे थे। फिर से दीनू भी कड़वा बोलने लगा था और बात बात पर झापड़ की धमकियां देने लगा था, और बसंती के हाथ में से दिन भर की कमाई के पैसे छीनने लगा था। बसंती को इस बात का भास होने लगा था कि फिर से कोई संकट आने वाला है, पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। फिर एक दिन तूफान फट पड़ा। रुक्मी ने सुबह उठते ही अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, और शीघ्र ही दीनू भी उसके साथ शामिल हो गया। बसंती हैरान सी खड़ी देखती रह गई। क्या कर रहे हो, बसंती ने पूछा तो दीनू ने रुखाई से कहा, देख तो रही है क्या कर रहा हूँ, हम लोग गांव जा रहे हैं। बसंती अवाक सी उनकी ओर देखती रह गई। उसके बाद न उन दोनों ने कुछ कहा और न ही बसंती कुछ बोली। केवल पप्पू को बसंती ने अपने साथ सटा लिया था और चुपचाप खड़ी यह नया कौतुक देखती जा रही थी। और अब बसंती अपने बेटे को कंधे पर बैठाए धीरे धीरे बस स्टाफ की ओर से अपनी कोठरी की ओर लौट रही थी। रुक्मी और दीनू अपने नन्हे बेटे को लेकर गांव लौट गए थे। बसंती अभी अभी उन्हें बस पर चढ़ाकर आ रही थी और बड़ा खाली खाली महसूस कर रही थी। बस कंडक्टर ने बस के अंदर उनकी ट्रंकी रखने से इनकार कर दिया था, और दीनू उससे उलझ गया था। फिर बसंती ने चवन्नी कंडक्टर के हाथ में रखी थी और उसने बड़बड़ाते हुए ट्रंकी को रखने की इजाज़त दे दी थी। दीनू कहता तो था कि रुक्मी और बच्चे को छोड़कर लौट आएगा, पृष्ठ संख्या 178, मगर कौन जाने लौटेगा या नहीं लौटेगा। बसंती का मन कह रहा था कि नहीं लौटेगा, इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रह गई है, यह क्यों लौटेगा। रुक्मी अपने बेटे को छाती से लगाए बस में बैठी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मेरी तरफ देखा तक नहीं, पप्पू से भी बोली तक नहीं। नहीं बोली तो क्या, दीनू ने भी पप्पू से प्यार दुलार नहीं किया। बस छूटने से पहले कुछ देर तक तो उसे गोद में उठाए रखा, और जब बस चलने को हुई तो मेरी गोद में देकर पीठ मोड़ ली, झूठा कहीं का। फिर से उसे पटक कर चला गया है, अब यह नहीं लौटेगा, अब उसी के साथ रहेगा। दिन खुल गए थे और हवा में कलियों की सुगंध फैली थी। धूप में चलना अच्छा लगता था। आसपास का वातावरण भी जाड़ों के खत्म होने के बाद निखरा निखरा सा लग रहा था, पर बसंती बेसुध सी अपने बच्चे को उठाए चली जा रही थी। श्यामा बीवी के घर के सामने से गुजरते हुए बसंती ने आंख उठाकर छज्जे की ओर देखा, पर उसका मन नहीं किया कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए। श्यामा बीवी को बताऊंगी तो वह यही कहेंगी, चला गया या नहीं, मैंने कहा था या नहीं कि बसंती तू सांप पाल रही है, रुक्मी की कोख से बच्चा हुआ तो तू धूल मिट्टी हो जाएगी, मैंने कहा था या नहीं कि दीनू दो कौड़ी का आदमी है, देख लिया तुझे जूती में पानी पिला गया है। श्यामा बीवी सदा इस तरह बात करती हैं जैसे उसने कोई बाजी जीत ली हो। श्यामा बीवी को इस बात का दुख नहीं होगा कि दीनू फिर से मुझे छोड़ गया है, उसे इस बात की ज़्यादा खुशी होगी कि उसका कहा सच निकला। श्यामा बीवी से अब बसंती का मन उचट गया था। उसने बहुत दिनों से श्यामा बीबी के घर जाना छोड़ दिया था। खास तौर से बसंती सारा वक्त ईर्ष्या की आग में जलती रही थी। वह फिर वैसा अनुभव नहीं करना चाहती थी। वह पुरानी आदत के मुताबिक जब कोई घटना घटती तो बसंती को श्यामा बीबी का ध्यान आता था कि उसे जाकर सारा किस्सा सुनाऊं। पर आज वह श्यामा बीबी के घर नहीं गई, सामने से होकर सीधी मार्केट की ओर जाने लगी। पृष्ठ संख्या 179। पप्पू को उठाकर चलना बसंती के लिए आसान नहीं था। बार बार वह रुक जाती। किसी किसी वक्त उसे उतार कर थोड़े थोड़े कदम उसे अपने साथ पैदल चलवाते। वह तंदूर को बनाए रखेगी। सारे घर की ना सही दो जीवों की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। पप्पू उसकी आंखों के सामने तो रहेगा। आगे देखा जाएगा जो होगा। अब दिन भी खुल गए हैं, जाड़ा खत्म हो गया है। अकेले में मुश्किल तो बहुत होगी, पर देखा जाएगा। अपने लोगों से जाकर मिलूंगी। क्या मालूम राधा ही लौट आई हो और मेरे साथ तंदूर चलाने को तैयार हो जाए। क्या मालूम माँ ही मेरे पास इधर आकर बैठ जाया करे। इधर ही तो काम करती है। माँ का ध्यान आते ही उसका मन हुआ माँ से जाकर मिले। उस रोज दूध के बूथ पर माँ मिली थी तो उसके साथ पहली बार प्यार से बोली थी। पहले तो नाक मुंह चढ़ाकर मुंह फेर लिया करती थी, बापू से डरती जो थी। इसीलिए अब तो गली मोहल्ले के लोगों से मेरे बारे में पूछती भी रहती है। इन्हीं ख्यालों में उलझी बसंती चली जा रही थी जब उसे पीछे की ओर से अजीब सा शोर सुनाई दिया। बसंती ने इधर उधर मुड़कर देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसा शोर है। वह सड़क के पार पेड़ की ओर देख रही थी जब उसे अपने दाएं हाथ भागते कदमों की आवाज़ आई। एक घर की दीवार के साथ बैठने वाला बूढ़ा मोची अपना बक्सा सिर पर उठाए हाँफता हुआ भागकर सड़क पार करने लगा था और दीवार के पास एक पुलिस का सिपाही खड़ा बड़ी सी गैंती के साथ चबूतरा तोड़ रहा था। पास में ही तीन चार सिपाही और भी थे। सभी ने सिर पर हरे रंग की लोहे की टोपियां पहन रखी थीं और उनके ऊपर मोटी रस्सी की जाली लगा रखी थी। देखते ही देखते सारे इलाके में भगदड़ मच गई थी। जगह जगह पुलिस के आदमियों की टोपियां नजर आ रही थीं। कहीं पर कोई पुलिस का आदमी डंडा हाथ में उठाए किसी के पीछे भाग रहा था। कहीं पर वह लाठी के साथ कुछ तोड़ रहा था। इतने ज्यादा पुलिस के आदमी सहसा पहुंच गए थे जितने बसंती ने केवल उस दिन देखे थे जब टीले पर बस्ती तोड़ी गई थी। पटरी वालों को उठा रहे हैं, पटरी वालों को उठा रहे हैं। यह आवाज़ बिजली की तेजी से चारों ओर फैल रही थी। पृष्ठ संख्या 180। बसंती पप्पू को लेकर एक ओर हट गई। उसने देखा मार्केट की ओर जाने वाली सड़क पर एक फल वाला जो हथठेला लगाता था कुछ आदमियों से घिरा खड़ा है और कोई हंगामा सा हो रहा है। यहाँ भी हड़बड़ी है और हवा में लाठियाँ उठ रही हैं। और फिर सहसा सड़क पर बहुत से संतरे और सेब और जाने क्या क्या लुढ़कने लगे हैं। कुछ दूर चौराहे के पास पटरी पर बैठा फल वाला हड़बड़ाया हुआ अपने फलों की टोकरियाँ उठा उठा कर लपक लपक कर पिछले घर के आंगन में रख रहा था। उठाओ उठाओ, वह बार बार बोले जा रहा था। भागते हुए बूढ़े मोची का बक्सा सिर पर गिर गया और गिरते ही खुल गया। चमड़े के बदरंग से छोटे छोटे टुकड़े, थिगलियां, धागे, टायर के टुकड़े, सभी औजार और छोटे छोटे कील सड़क पर बिखर गए। बूढ़ा मोची इतना घबराया हुआ था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उठाए और क्या नहीं उठाए। हड़बड़ाया हुआ ही वह बार बार सिपाहियों की ओर देख रहा था। अपनी ओर एक पुलिस वाले को आता देख कर वह बक्सा वहीं छोड़कर भागता हुआ पार्क के फाटक में घुस गया। नाली के पार एक खोमचे वाले का खोमचा और चमचमाता पीतल का बड़ा सा पतीला वहीं उलट दिए गए थे और एक लट खोमचे वाले के जलीरे से भरे मिट्टी के घड़े पर पड़ा जिससे सारा जलजीरा फव्वारे की तरह उछला और सड़क के किनारे बहने लगा। फिर पहले सी घरघराती हुई आवाज आई। बसंती ने मुड़कर देखा। पीछे से एक लारी घरघराती हुई चली आ रही थी। उस पर भी लोहे की हरी हरी टोपियां पहने पुलिस के सिपाही खड़े थे। लारी बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। बसंती झट से एक तरफ को हट गई। लारी निकल गई तो थोड़ी देर बाद बसंती ने देखा उसका बाप सड़क पर लारी के पीछे पीछे भागता आ रहा है। दे जाओ मेरा थैला दे जाओ, ए साहिब मेरा थैला दे जाओ। बसंती का बूढ़ा बाप दौड़ दौड़ कर बदहवास हो रहा था, उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं, पर वह फिर भी दौड़े जा रहा था। ऐ साहिब मेरा थैला दे जाओ। उसका नीले रंग का कुर्ता पसीने से भीग गया था और वह बुरी तरह हाँप रहा था। लारी उत्तर उत्तर दूर होती जा रही थी, पर लड़खड़ाते कदमों से चौधरी अभी भी भागता जा रहा था। लारी के अंदर हथठेले, मेज, बक्से, जाने क्या क्या लदे थे। पृष्ठ संख्या 181। बाप को यूं भागता देखकर बसंती को रुलाई आ गई, उसका गला रुंध रुंध गया। उसने अपने बाप को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। वह सदा उसकी आंखों के सामने एक दैत्य सा लगा करता था। उसे मालूम नहीं था कि किसी दिन वह उसे नंगे सिर, निसहाय, पसीने से तर, लाचारगी में भागता हुआ देखेगी। बसंती ने वहीं खड़े खड़े चिल्लाकर कहा, बापू, पर उसके बाप ने नहीं सुना। बसंती उसके पीछे पीछे भागकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने पप्पू को गोद में उठा रखा था, कैसे भागती। बाप का नीला कुर्ता दूर चला गया था, लारी आंखों से ओझल हो गई थी, पर बसंती का बाप बार बार हाथ उठाता सड़क के बीचों बीच अभी भी उसके पीछे भागा जा रहा था। तभी उसे सड़क पर अपनी माँ भागती हुई नजर आई। वह भी घबराई हुई थी और हाथ पसार पसार कर पुकार रही थी, हाय जी लौट आइयो, लौट आइयो, हाय जी लौट आइयो। माँ का पल्ला गले में आ गया था और पैर नंगे थे, उसकी आवाज़ फुसफुसा कर रह जाती थी। लगता था माँ अभी गिरी कि गिरी। बसंती ने माँ को पुकारा, पर आसपास के शोर में माँ ने भी नहीं सुना। इसी बीच एक और लारी दहाड़ती हुई सड़क पर से गुजर गई। अगर बापू का थैला पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं, तो चाचे की स्त्री और चचेरे भाई का हथठेला भी उठाकर ले गए होंगे। तभी उसे बड़ी सड़क की ओर से गोविंदी भागती नजर आई। वह रोए जा रही थी, भारी भरकम गोविंदी से भागा नहीं जा रहा था। वह दो कदम भागती, फिर रोती हुई धीरे से चलने लगती और फिर से भागने लगती। दाढ़ी जार सब तोड़ गए हैं, मैं कहीं की नहीं रही, सब तोड़ गए हैं। दाढ़ी जार मेरा बक्सा उठाकर ले गए हैं, दाढ़ी जार सब तोड़ गए हैं। वह रोती हांपती हुई बोले जा रही थी। मार्केट के बड़े बड़े दुकानदार और कितने ही मनचले दुकानों के बाहर आकर खड़े हो गए थे, और खोमचे वालों, नाई, धोबी, मोची पटरी पर बैठकर पृष्ठ संख्या 182 धंधा करने वालों को खदेड़े जाने का तमाशा देख रहे थे। वह मारा एक दुकान के चबूतरे पर खड़े एक मोटे से आदमी ने अपनी रान खुजलाते हुए कहा। बसंती ने देखा बैंक की इमारत के बाहर छोटी सी बांगी पर रखे चाट के बर्तन पर लाठी पड़ी थी और बर्तन सड़क पर लुढ़कने लगा था। उसकी आंखें पार्क के सामने पटरी पर खड़े सिपाहियों पर गई, जिन्होंने चाट वाले का बर्तन डंडों से उलट दिया था और बर्तन लुढ़कता हुआ सड़क के बीचों बीच चला आया था। वह हमारा एक आवाज आई। नजदीक ही पुलिस वाले के एक सिपाही ने बूट पॉलिश करने वाले एक लड़के का पॉलिश का बक्सा उठा रखा था और उस लड़के की टोपी सिर पर से उतार कर दुकान की छत पर फेंक दी थी। आसपास खड़े दुकानदार हंस रहे थे, पुलिस का सिपाही खुद भी हंस रहा था। भाग जा नहीं तो तुझे भी उठाकर छत पर फेंक दूंगा, पुलिस वाले ने कहा और आसपास खड़े दुकानदारों की ओर देखकर हंसने लगा और लड़के का पॉलिश का बक्सा अपने पास पटरी पर रख लिया। दुकानदार भी हंस रहे थे। बसंती की माँ भी अब आंखों से ओझल हो चुकी थी। न जाने दोनों घिसटते हुए कहाँ जा रहे थे। बसंती का चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसके बाद दो तीन लारियाँ और वहाँ से गुजरी थीं। सभी पर सिपाही थे, सभी पर पटरी से उठाया हुआ सामान था। कुछ पर इक्के दुक्के और लोग भी थे। ये वे लोग होंगे जिन्हें पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, वे लोग जिन्होंने अपना सामान नहीं उठाने दिया होगा। तभी बसंती को अपने तंदूर का ध्यान आया, क्या मालूम उसे भी तोड़ गए हों। मेरा तो बेंच भी वहां रखा है और परात और भाड़े भी और आटे का कनस्तर भी। बसंती घबरा गई। रुक्मी और दीनू के साथ घर से निकलते समय वह एक बुढ़िया पड़ोसिन को तंदूर के पास बिठा आई थी। बसंती पार्क के साथ साथ आगे को बढ़ने लगी। पप्पू को गोद में उठाकर उसके लिए तेज तेज चल पाना कठिन हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि तेज तेज चलने में पृष्ठ संख्या 183 अब कोई तुक नहीं है, कोई लाभ नहीं है, जो होना था हो चुका होगा। मोड़ काटने पर ही उसे भास हो गया कि सब समाप्त हो चुका है। आहते में धूल उड़ रही थी। यों वहाँ पर कोई नहीं था, न सिपाही न कोई लारी। हाँ, कुछ बच्चे जो अभी तक लारियों और सिपाहियों का तमाशा देखते रहे थे इधर उधर डोल रहे थे। मिट्टी के मलबे पर दो बांस आड़े तिरछे खड़े थे। इन पर वह अपना लैंप टांगा करती थी। चबूतरे के नीचे हरिकेन लैंप औंधा पड़ा था। उसकी चिमनी टूट चुकी थी। पास में दो तीन प्लेटें टूटी पड़ी थीं। सिपाहियों की गैंतियाँ उसके टूटे फूटे बेंच पर भी पड़ी थीं और वह भी जमीन पर औंधा पड़ा था और उसकी टांगी ऊपर को उठी थीं। टाट नज़र नहीं आ रहे थे, शायद मलबे के नीचे दबे पड़े थे। मिट्टी की परात की ठिकरियाँ कुछ चबूतरे के ऊपर कुछ नीचे बिखरी पड़ी थीं। तंदूर को गैंतियाँ मार मार कर वैसी ही निर्ममता से तोड़ दिया गया था जैसे बस्ती तोड़ने पर घरों के चूल्हों और अंगीठियों को तोड़ा गया था। इस खंडहर के पास बसंती देर तक खड़ी अपनी उजड़ी गृहस्थी का रूप देखती रही। तभी उसे सामने से मोड़ काट कर आती श्यामा बीबी नजर आई। मार्केट में मैंने पुलिस वालों को देखा, तभी मुझे खटका हुआ। मैंने कहा, जाकर अपनी आँखों से देखाऊँ। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, दीनू कहाँ है और उसकी घरवाली? मुझे यही डर था कि तेरे तंदूर को भी नहीं छोड़ेंगे। आसपास डोलते बच्चे भी बसंती के पास आ गए। एक लड़के ने कहा, तेरे बर्तन पुलिस वाले लारी में लाद कर ले गए हैं, आटे का कनस्तर भी। फिर दूसरा बोला, बुढ़िया ने शोर मचाया तो एक पुलिस वाले ने उसे गाली दी और डंडा मारा। बसंती चुपचाप खड़ी रही। दीनू कहाँ है और उसकी घरवाली? श्यामा बीबी ने फिर से पूछा। वह तो यहाँ से चले गए हैं बीबी जी। चले गए हैं? कहाँ गए हैं? श्यामा बीबी का सारा ध्यान और दिलचस्पी टूटे तंदूर से हटकर दीनू और रुक्मी पर आ गई थी। पृष्ठ संख्या 184। वह अपने गांव लौट गए हैं बीबी जी। और तुमने उन्हें जाने दिया? फिर बसंती की ओर देखकर बोली, और तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया? फिर बसंती के पास आकर अपनी तर्जनी चमकाती हुई बोली, देखा बसंती, मैंने कहा था या नहीं? बसंती मुस्कुरा दी, हाँ बीबी जी, आपने कहा था। मैंने पहले दिन ही कहा था, यह आदमी अच्छा नहीं है, यह एक दिन तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। बसंती चुपचाप खड़ी रही, हौले हौले मुस्कुराती हुई बोली, तो आप बीबी जी? श्यामा ठिठक कर बसंती के चेहरे की ओर देखने लगी। अब क्या करेगी पगली, कहाँ जाएगी? क्यों बीबी जी? पीछे मेरी कोठरी है, पास में पप्पू है। मलबे के ढेर की ओर नजर घुमाकर श्यामा बीबी सिर हिलाते हुए बोली, मैंने कहा नहीं था यहाँ तंदूर मत लगाओ? किसी दूसरे आदमी की जमीन पर तुमने अपना तंदूर बना लिया था तो क्या बीबी जी? बसंती ने अनमनी सी आवाज में कहा। अब उसे पुलिस ने तोड़ डाला या नहीं? बसंती चुप रही, सिर को तनिक झटक दिया। एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। बसंती ने पप्पू को गोद में उठा लिया जो जमीन पर पड़े टूटी प्लेट के टुकड़े के साथ खेलने लगा था, और बसंती जिस ओर से आई थी उसी ओर जाने लगी। तू कहाँ जा रही है बसंती? श्यामा बोली। बापू का थैला उठाकर ले गए हैं बीबी जी, वह लारी के पीछे पीछे भाग रहा था। माँ भी भाग रही थी, मैं उनकी ओर जा रही हूँ, देखूँ कहाँ पर हैं। और बसंती पप्पू को छाती से लगाए पिछली सड़क की ओर घूम गई। समाप्त।